Que privilégio poder fazer parte deste
momento. क्या सौभाग्य है इस ऐतिहासिक क्षण का भाग होने का जब हम जनरल सम्मेलन के अध्यक्ष के पास अपनी मूल भाषा में बोलने का विकल्प है. पहली बार जब मैं बोला था मंच में, मैं चिंतित था अपने अंग्रेजी उच्चारण को लेकर. अब मैं चिंतित हूँ परतोजी, मैं अपनी तेजी को लेकर. मैं उपशिक्षकों से जल्द नहीं बोलना चाहता. हम सब ने अनुभव किया है या फिर अभी अनुभव करेंगे अपने जीवन के बड़े निर्णयों के लक्ष्य. क्या मुझे यह पेश चुनना चाहिए या कुछ और? क्या मुझे मिशन पर जाना चाहिए? क्या यह सही व्यक्ति है शादी करने के लिए? ये परिस्थिति है हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें कि एक छोटा सा मार्ग में बदलाव महत्वपूर्ण भविष्य के परिणाम ला सकता है. अध्यक्ष डिटेर उपडॉक ने शब्दों में, प्रभु की वर्षों से सेवा करते हुए मैंने सीखा है अंतर खुशी और दुख में व्यक्ति के व्यवहार में और परिवारों में जो कि कुछ श्रेणी की गलतियों से नीचे आ जाता है. हम किस तरह से ये छोटी गलतियों को आंकलन में बदल सकते हैं? मैं एक निजी अनुभव का इस्तेमाल करूंगा अपने संदेश को स्पष्ट करने के लिए. अंत में हमारे छोटा सा परिवार, मेरी पत्नी मोनिका, हमारे चार में से दो बच्चे और मुझसे बना हुआ था. हम ब्राजील में रह रहे थे. मैं एक अच्छी कंपनी के लिए काम करता था. मैंने अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई खत्म की और हाल में ही जहां हम रहते थे उसे वार्ड के विश्व पद से सेवामुक्त हुआ था. जीवन अच्छा था और सब वैसा ही लग रहा था जैसा था जब तक कि एक दिन का पुराना मित्र हमसे मिलने आया. जाने के समय में उसने एक टिप्पणी दी और मुझसे उसने पूछा, उसने कहा, कार्लोस, सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा चल रहा है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा काम और तुम्हारे गिरजाघर में सेवा, परंतु फिर वहाँ प्रश्न आया, यदि तुम निरंतर ऐसे ही जिए जैसे तुम जी रहे हो, क्या कुलपति के आशीर्वाद का वादा की गई आशीषें पूरी होंगी? मैंने कभी अपने कुलपति के आशीषों के बारे में नहीं सोचा था. मैंने उसे समय समय पर पढ़ा था, परंतु उसे कभी भी किसी वादा की गई आशीष की नजर से नहीं देखा था और न मूल्यांकन से आज मैं कैसे रह रहा था. उसके जाने के बाद मैंने अपना ध्यान कुलपति के आशीर्वाद की ओर किया, सोचते हुए यदि हम निरंतर ऐसे ही जिए जैसे हम जी रहे हैं, क्या वादा की गई आशीषें पूरी होंगी? कुछ क्षण विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है, विशेष रूप से मेरी शिक्षा और काम में. कि निर्णय सही और गलत के बीच नहीं था, परंतु क्या अच्छा और क्या बेहतर है बीच का था. जैसे कि और ने सिखाया, जब उन्होंने कहा, जैसे कि हम अपने बहुत से चुनावों को गौर करते हैं, यदि याद रखना चाहिए कि ये काफी नहीं है कि कुछ अच्छा है, दूसरे चुनाव बेहतर हो सकते हैं और कुछ भी सबसे अच्छे हैं. हम कैसे जान सकते हैं कि हम सबसे अच्छा निर्णय कैसे ले रहे हैं? ये कुछ सिद्धांत है जो मैंने सीखे हैं. सिद्धांत एक, हमें विचार करना है अपने विकल्पों पर अंत को अपनी सोच में रखकर. निर्णय लेना हमारे जीवन और हमारे प्रेम करते हैं और परमेश्वर बिना किसी दिव्य दर्शन के इसके परिणाम कुछ विपत्ति ला सकते हैं. ये समझना कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, ये प्रभु हमारे लिए जीवन में चाहता है, क्या एक व्यापक दिव्य दर्शन देगा कि हमें किस तरह की आवश्यकता है. हम उदाहरण पा सकते हैं धर्मशास्त्र में किस तरह की व्यापक दिव्यदर्शी से सफाई होती है. मूसा ने प्रभु में सामने बात की, उद्धारकर्ता की योजना के बारे में सिखाया और तब से अपनी उसने भविष्यवक्ता की भूमिका को बेहतर समझा इसराइल को इकट्ठा करने में. और प्रभु ने मूसा से कहा, देखो मैं शक्तिशाली प्रभु हूँ और मैं तुम्हें अपने हाथों की कारीगरी दिखाऊंगा और मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मूसा मेरे पुत्र. इस समझ के साथ मूसा वर्षों तक रेगिस्तान में दर्द सहता रहा और इसराइल को वापस ला सका. लेही मॉर्मन की पुस्तक का एक महान भविष्यवक्ता हुआ, सपने का सामना देखा और दिव्य दर्शन में सीखा अपने परिवार को एक वादा किए हुए देश में ले जाने को। और ऐसा हुआ कि प्रभु ने हमारे पिता को आज्ञा दी एक स्वप्न में कि वह अपने परिवार को लेकर जंगल में चला जाए, और उसने घर छोड़ दिया और अपने पूर्वजों की जमीन और अपना सोना और अपनी चांदी और अपनी कीमती वस्तुएं। लेही अपने दिव्य दर्शन के प्रति वफादार था। उसकी अपेक्षा, उसकी यात्रा की मुश्किलें और उसे पीछे छोड़ना पूरा एक आरामदायक जीवन। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ एक और एक महान उदाहरण है। बहुत सारी प्रतिकरण से पहला दिव्य दर्शन वह अपने सारी वस्तुओं को पुनः स्थापित कर सके। और हमारा क्या, प्रभु हम में से हर एक से क्या उम्मीद करता है? हमें दूत को देखने की आवश्यकता नहीं है समझ पाने के लिए। हमारे पास धर्मशास्त्र, मंजीर, जीवित भविष्यवक्ता, हमारी कुलपति का आशीर्वाद, प्रेरित अध्यक्ष और सबसे ऊपर हक निजी प्रतिकरण प्राप्त करने का, जो हमारे निर्णयों को मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धांत नंबर एक, दो, हमें तैयार रहना है उन चुनौतियों के लिए जो आएंगी। जीवन के सबसे अच्छे मार्ग कम ही आसान होते हैं, अक्सर इसका उल्टा होता है। हम भविष्यवक्ताओं के उदाहरण देकर देख सकते हैं जिनकी मैंने चर्चा की। मूसा, लेही और जोसेफ स्मिथ की यात्रा आसान नहीं थी, इसके बावजूद कि उनके निर्णय सही थे। क्या हम अपने निर्णय को मूल चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आराम को छोड़कर एक बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं? मेरे अनुभव पर वापस आते हुए मेरे साथ कुलपति का आशीर्वाद, मैं इस निश्चय पर आया कि उस समय मुझे उच्च शिक्षा की आवश्यकता थी और मुझे छात्रवृत्ति के लिए एक अमेरिकन विश्वविद्यालय में आवेदन करना था। यदि मैं चुना गया तो मुझे नौकरी छोड़कर सब कुछ बेचकर छात्रवृत्ति का छात्र बनकर 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र में रहना होगा। जैसे परीक्षाएं पहली चुनौती थी, 3 साल की लंबी तैयारी के बावजूद बहुत से ना और कुछ हाँ सबसे पहले कि मेरी विश्वविद्यालय में दाखिला होता। मुझे यदि हाँ और मैं फोन का कॉल 3 साल के बाद मैं एक व्यक्ति ने किया जो कि छात्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार था। उसने कहा, कार्लस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि तुम इस साल पहले 3 में हो और इस बार केवल 1 स्थान है। बुरी खबर यह है कि पहला उम्मीदवार किसी विशेष का, दूसरा उम्मीदवार किसी और विशेष महत्वपूर्ण पुत्र है और वो तुम हो। मैंने जल्द ही जवाब दिया और मैं उसका पुत्र हूँ। खुशी से धरती के कुल निश्चित करने के तत्व नहीं थे और मुझे उस साल स्वीकार कर लिया गया। हम शक्तिशाली परमेश्वर के बच्चे हैं, वह हमारा पिता है, हमें प्रेम करता है और हमारे लिए उसके पास योजना है। हम इस जीवन में सिर्फ अपना समय बर्बाद करने, ढूंढने के लिए या मरने के लिए नहीं आए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े और अपने सामर्थ्य को प्राप्त करें। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के शब्दों में, तुम में से हर एक शादीशुदा या अकेला उम्र के बावजूद अवसर प्राप्त करता है सीखने और बढ़ने की। अपने ज्ञान को फैलाओ, दोनों दिमागी और आत्मिक, पूरी उच्चता तक ईश्वरीय सामर्थ्य से। सिद्धांत नंबर 3, हमें यह स्वप्न उन लोगों के साथ बांटना है जिन्हें हम प्रेम करते हैं। लेही ने कुछ कोशिश की लेमन और लेमन के उस बदलाव की महत्वता को समझने की जैसे वह ला सके। हकीकत में वह अपने पिता के दिव्य दर्शन को ना बांट सके, जिसके कारण वह सारी यात्रा पर बड़बड़ाते रहे। दूसरे हाथ में नफी शब्द प्रभु को तलाशता वहाँ वही देखने के लिए जो उसके पिता ने देखा। और ऐसा हुआ, मैं नफी ने उस बातों पर सुना पश्चाताप जो पिता ने दिव्य दर्शन में देखी थी। मुझ नफी ने इच्छा की कि मैं भी पवित्र आत्मा की शक्ति इन बातों को देख और सुन सकूं। इस दिव्य दर्शन के साथ नफी न सिर्फ अपनी यात्रा की चुनौतियों पर काबू पा सका, परंतु परिवार का नेतृत्व भी किया। ये बहुत संभव है कि हम एक मार्ग लेने का निश्चय करते हैं, वह लोग जिन्हें हम प्रेम करते हैं और कुछ हमारे साथ इन चुनाव के परिणाम भी बांटते हैं। आदर्श रूप से वह वह देखेंगे जो हम देखते हैं.
Na experiência pessoal que tenho usado como ilustração.
अपने निजी अनुभव में मैंने स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया. मुझे बिना शक अपनी पत्नी के साथ की जरूरत थी. बच्चे अभी भी छोटे थे और कुछ नहीं कह सकते थे, परंतु मेरी पत्नी का साथ अवश्य था. मुझे याद है पहले मोनिका और मैंने ध्यान से योजना में बदलाव के बारे में वार्तालाप किया, जब तक कि उसको आरामदायक ना लगा और वह भी प्रतिबद्ध हुई. इस स्वप्न ने उसे सिर्फ साथ के लिए ही नहीं, परंतु उसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना सफलता का. मैं जानता हूं कि प्रभु के पास हमारे इस जीवन के लिए एक योजना है. वह हमें जानता है, वह जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है. क्योंकि चीजें अच्छी चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि समय समय पर हमें विचार नहीं करना चाहिए कि कुछ बेहतर हो सकता है. यदि हम निरंतर ऐसे ही जिए जैसे कि हम जी रहे हैं, क्या वादा की गई आशीषें पूरी होंगी. परमेश्वर जीवित है, हमारे पिता हैं. उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित है और मैं जानता हूं कि उसके प्रायश्चित के बलिदान से हम शक्ति पा सकते हैं अपने चुनौतियों को. यीशु मसीह के नाम में आमीन.